प्रांजल ने प्रियल को पूरी बात बता दी। सुबह का समय था और सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। प्रियल ने पूरी बात सुनी तो वो उन दोनों का मुंह ताकने लगी। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होना है पापा, उनका बिहेवियर हमेशा से मेरे अगेंस्ट ही रहा है। हाँ, लगता नहीं लेकिन वो ऐसा दिखा देते हैं, प्रियल ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है प्रियल, प्रांजल बोली। जिस तरह से तुम अपने जीजा को अपना पापा समझती हो, उसी तरह से वे भी तुम्हें अपनी बेटी ही समझते हैं। एसी में एडमिशन ना होने की वजह से वे टेंशन में आ गए होंगे। इसी वजह से बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए उन्होंने तुम्हारा एडमिशन चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट में करवाया। लेकिन मुझे वहां नहीं जाना। हाँ, तुम तो निक के पास जाना चाहती हो, अर्जुन आराम से खाना खा रहा था। उसने खाते हुए ही अपनी बात कही। नहीं, बात वो नहीं, प्रियल ने अपना चेहरा उसकी ओर किया। अगर मैं उसके पास नहीं जा पाती हूँ तो मैं यहाँ तुम लोगों के पास रहना बेहतर समझती हूँ। एक ही वक्त पर दो दो सदमे सहना मेरे बस की बात नहीं है, और मुझे लगता है तुम्हारे पास इन दोनों ही सदमों को सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्रांजल ने अपनी खाने की प्लेट संभाली। निक के इंस्टीट्यूट के लिए प्री ट्रेनिंग और 3 लाख रुपये फीस बड़ी मुसीबत है, जबकि चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट में तुम्हारे पास ना जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ की फीस लगभग 6 लाख रुपये है, जो पापा ने भर दी है। वो रिफंड भी नहीं हो सकती। पापा को तो कोई फिक्र नहीं होगी, लेकिन मम्मा को मैं इतने बड़े नुकसान की खबर नहीं सुना सकती। प्रियल मायूस हो गई। उसने आगे कुछ नहीं कहा, जिसके बाद सब खाना खाने लगे। कुछ देर खाना खाने के बाद वो बोली, प्री ट्रेनिंग मेरे लिए कोई खास दिक्कत नहीं है, मगर बाकी की दोनों चीज़ों का सल्यूशन मेरे पास भी नहीं है। इतना कहकर वो फिर से पहले जैसी हो गई। वहीं अर्जुन और प्रांजल एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद अर्जुन ने खाने की प्लेट की ओर देखा और आंखें बंद कर खुद में ही कुछ सोचने लगा। निक अपने ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम कर रहा था, तभी एवेलिन वहां आई और उसका गाल चूम लिया। निक ने अपना चेहरा दाईं ओर किया और हल्के गुस्से में कहा, तुम कितनी बार कहा है ऐसे काम मत किया करो, इंस्टीट्यूट में तो बिल्कुल भी नहीं। ओह, मुझे किस बात का डर, मैं तुम्हारी बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरे लिए इतनी तो छूट होनी चाहिए। नहीं, इंस्टीट्यूट में किसी के लिए भी किसी तरह की छूट नहीं है। मेरे लिए भी नहीं, एवेलिन ने निराश चेहरे के साथ पूछा। निक ने उसके निराश चेहरे को देखा और फिर अपना मुंह दूसरी तरफ कर कहा, हाँ, तुम्हारे लिए भी नहीं है। तो फिर मुझ में और बाकियों में क्या फ़र्क रह गया? तुम फ़र्क पैदा ही क्यों करना चाहती हो, निक उसकी ओर हुआ और स्ट्रिक्ट अंदाज में पूछा, क्या तुम ये चाहती हो मैं तुम्हें बाकियों की तरह ट्रीट करूँ? मेरे लिए सब चीज़ इंस्टीट्यूट में फॉर्मल रहती है, और मैं ये कब से करता आ रहा हूँ। मेरे खुद के दोस्त रूल तोड़ते हैं तो मैं उन्हें भी इसके लिए डांटता हूँ, उन्हें सज़ा भी देता हूँ। अगर मुझे उन्हें उनके किसी काम की वजह से यहाँ से निकालना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, हम कभी इन्हें कंबाइन नहीं कर सकते। एवेलिन निक को स्ट्रिक्टली देखकर बिल्कुल चुप कर गई। वो कुछ नहीं बोली। तो निक ने उससे पूछा, बताओ तुम यहाँ किस काम से आई थी? एवेलिन ने उतरे हुए चेहरे के साथ कहा, मैं तुम्हें ये बताने आई थी, मॉम का कॉल आया था। उन्होंने कुछ दिनों के लिए मुझे अपने पास लंदन बुलाया है, शायद अब हम कुछ दिन तक ना मिल पाएं। निक के चिल्लाने पर वो थोड़ा उदास हो गई। मैं तुम्हें बस यहाँ बाय बोलने आई थी, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। निक अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके सामने जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर हाथ रख उसने कहा, मैं जानता हूँ मैं जो भी करता हूँ उसके बाद किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, मगर इसके बावजूद तुमने मेरे लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ये इतना आसान नहीं है। तुम मुझे समझती हो, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है, मेरे लिए खुद को बदल पाना कितना मुश्किल है। मैं अपने रूल एंड रेगुलेशन आसानी से कभी नहीं बदल पाऊंगा, तो सॉरी फॉर इट। फिर उसने एवेलिन को गले लगाया और कहा, मगर तुम ये भी जानती हो तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, तुम जाने के बाद मैं तुम्हें मिस करूंगा। निक के गले लगने के कारण एवेलिन सब भूल गई। उसने भी जवाब में निक को कसकर गले लगाया और कहा, मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। दोनों थोड़ी देर और गले लगे, जिसके बाद एवेलिन वहां से चली गई। उसके जाने के बाद निक वापस अपने काम में लग गया। प्रियल और प्रांजल दोनों तकरीबन 12 बजे के करीब कॉलेज की क्लासेस लगा रहे थे। अर्जुन सुबह खाने के बाद से गायब था, वो कुछ खास बताकर नहीं गया था। प्रांजल ने इधर उधर देखा और फिर प्रियल को देखते हुए बोली, इस अर्जुन नाम के बंदे को तो अब तक आ जाना चाहिए था, कहाँ चला गया आखिर ये, सुबह से इसका कोई नामो निशान नहीं। बंक मार लिया होगा आज इसने, प्रियल ने अपना ध्यान सामने बोर्ड की तरफ रखा। तुम्हें पता है ना, वो बंक मारने वाला बंदा नहीं है, मजाक मस्ती खूब कर लेता है लेकिन ऐसे काम कभी नहीं करता। हम भी छुट्टी कर लेते हैं मगर इसकी छुट्टी आज तक नहीं हुई, तो आज उसका मन कर गया होगा, प्रियल नोट्स उतारने लगी। पता नहीं कहाँ गया है कहाँ नहीं, जब आएगा तभी पता चलेगा, प्रांजल बोली और फिर वो भी पढ़ाई की ओर ध्यान देने लगी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों कंपाउंड में जाकर अपने बेंच पर बैठ गए। वहां प्रियल लैपटॉप पर निक के कुछ पुराने इंटरव्यू देखने लगी, जबकि प्रांजल कॉलेज का ही थोड़ा बहुत काम करने लगी। इतने में अर्जुन पीछे से आया और आते ही बोला, एक गुड न्यूज है। ओह क्या, तुम माँ बनने वाले हो, प्रियल उसका मजाक बनाते हुए बोली। नहीं, तू बाप बनने वाली है, लोगों को हमेशा गुड न्यूज का यही मतलब क्यों समझ में आता है,
अच्छा सुन मेरी बात, तेरा यूएसए के इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया है। ये सुनते ही दोनों अपना काम छोड़ उसकी तरफ देखने लगे। प्रांजल उसे देखते हुए बोली, तुम पीकर आए हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो? इसका एडमिशन कैसे हो सकता है और फीस वो कैसे अरेंज हुई? वो एक्चुअली, अर्जुन इतना बोलकर चुप कर गया। क्या आगे भी कुछ बोलो, प्रियल ने कहा। तुम लोगों को पता है ना मेरे पास एक कार थी, मैंने उसे बेच दिया। आई यू मैड? प्रियल अपनी जगह से खड़ी हुई और एकदम से चिल्लाते हुए बोली, तुमने ऐसा करने की सोची भी कैसे? तुमने ऐसी स्टूपिड हरकत की। प्रांजल भी अपनी जगह से खड़े होकर उसे चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा सच में दिमाग घूम गया है। दिमाग मेरा नहीं, तुम दोनों का घूमा है। मुझे अपनी कार वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं थी, फिर पेट्रोल भी तो कितना महंगा हो गया था। कार से ज्यादा खर्चा तो पेट्रोल पर ही होता है। तुम ना अब बात को घुमाओ मत, प्रियल ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। चुपचाप कार जहाँ बेची है वहाँ जाओ और जाकर उसे वापस लेकर आओ। नहीं चाहिए मुझे वहाँ एडमिशन, मेरे दोस्तों को ये सब करना पड़े, इसके बारे में तो मैं सपने में भी ना सोचूं। चलो लेकर आओ कार, प्रियल धमकी वाले अंदाज में आ गई। अर्जुन ने अपनी पीठ पर टंगे बैग को सामने की तरफ किया और उसे खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लगा। अगले ही पल उसने उसमें से कुछ प्रिंटेड कागज निकाले और प्रियल की तरफ बढ़ा दिए। शायद तुम लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं, मैंने कहा इसका एडमिशन हो गया है, मतलब फीस भरी जा चुकी है, रिफंड होने का कोई चांस नहीं। जब चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट की फीस रिफंड नहीं हो सकती, वो तो फिर भी यूएसए का इंस्टीट्यूट है।
प्रियल ने डॉक्यूमेंट्स पकड़े और उन्हें पढ़ा। उन्हें पढ़ने के बाद वो एकदम से बेंच पर बैठ गई। प्रांजल ने ये देखकर प्रियल से डॉक्यूमेंट्स लिए और उसने भी उन्हें पढ़ा। फिर वो भी खामोश होकर वहीं बेंच पर बैठ गई। अर्जुन उन दोनों के सामने आया और बोला, तुम लोग मेरी कार की फिक्र मत करो, जिस तरह से पिछली बार मैंने ईएमआई पर अपनी कार ली थी, उसी तरह इस बार भी मैं ईएमआई पर अपनी कार दोबारा ले लूंगा। हम तीनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, हमेशा से एक दूसरे की मदद करते आए हैं, चाहे वो छोटी मदद हो या बड़ी। प्रियल का करियर, जो भी है, मैं इसका दोस्त होने के नाते ये कभी नहीं चाहूंगा इसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाए। हम में से कोई ये नहीं चाहेगा कि हम में से किसी की भी कोई इच्छा अधूरी रह जाए। हमारी दोस्ती ऐसी ही है। प्रियल ये सुनते ही अपनी जगह से खड़ी हुई और अर्जुन को गले से लगा लिया। वो रो पड़ी थी। प्रांजल भी अपनी जगह से खड़ी हुई और वो भी दोनों के गले लग गईं। कुछ देर गले लगने के बाद सभी एक दूसरे से अलग हुए और प्रांजल ने कहा, अब चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट का क्या होगा? अगर मैंने पापा को कहा प्रियल वहां नहीं जा रही, तो उनका गुस्सा नहीं संभाला जाएगा। फिर प्रियल यूएस जा रही है या उसका एडमिशन वहां हो गया है, इस खबर के बाद तो भूकंप ही आ जाएगा। तुम्हें पता है मेरा दिमाग यूं तो चलता नहीं, मगर जब चलता है तब खतरनाक ही चलता है। मैंने एक छोटा सा आइडिया लगाया है, जिसके बाद चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट वाली प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। उसने प्रांजल की तरफ देखा और कहा, प्रांजल तुम्हें पता है ना, हमारी क्लास में प्रियल शर्मा नाम की ही एक और लड़की है, उसका फादर का नाम भी सेम है। क्लास में दोनों के सेम नाम और सेम फादर नेम की वजह से टीचर भी काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं। जब तक वे दोनों की शक्ल ना देख लें, तब तक उनकी कन्फ्यूजन मुश्किल से ही दूर होती है। अगर हम अपनी प्रियल की बजाय उसे चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट जाने के लिए मना लें, तो तुम्हारे पिता को कभी पता ही नहीं चलेगा प्रियल क्या कर रही है या वो कहाँ है कहाँ नहीं। मगर ये जाएगी तो यूएस ही ना, तो वहाँ पापा इसे देख लेंगे नहीं? प्रांजल ने पूछा। तुम्हारे पापा अथॉरिटीज़ में बड़े हैं, इंस्टीट्यूट के हेड नहीं, उनका वहाँ ज़्यादा आना जाना ही नहीं होगा। अथॉरिटीज़ में बड़े जितने भी डिसीजन होते हैं वो बाहर से ही होते हैं, या उनकी मीटिंग होती है वहीं डिसीजन लिए जाते हैं, ऐसी का कोई लेना देना नहीं होता है। उन्हें खुद पता नहीं चलेगा और बताने वाले मामले में हम दोनों ही होंगे, जो उन्हें ये बात कभी नहीं बताने वाले, अर्जुन ने प्रांजल को बताया। प्रांजल सोच में पड़ गई, जबकि प्रियल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है। उसने कहा, मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। उसके ये बोलते ही अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरा यकीन मानो, तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे चलकर मैं सब पहले जैसा कर दूंगा, मैंने जो भी सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। पर कुछ नहीं, तुम बस जाने की तैयारी करो, अर्जुन ने कहा और अपने चेहरे पर मुस्कान दी। प्रियल कुछ देर तक तो फिर से खुद में ही सोचती रही, मगर इसके बाद वो अर्जुन के गले लग गई। थैंक यू सो मच अर्जुन, उसने अर्जुन को कहा। प्रांजल भी अर्जुन के पास आई और उसके गले लगते हुए कहा, मेरी ओर से भी एक थैंक यू रख लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, इतने सारे थैंक यू को मैं बैंक में रखकर काफ़ी बड़ा लोन ले लूंगा और फिर एक दिन अंबानी बन जाऊंगा। उसने ये कहा तो सब हंसने लगे।